सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कल प्रसंग चल रहा था जल महाभूत के द्वारा परमात्मा की उपासना का विषय। जल महाभूत जो हमारे शरीर में परिणाम भाव को प्राप्त होकर के 10 भागों में शरीर के प्रधान रूप से ठहरा है और 10 स्थानों में रह करके इस शरीर के संगठन का और जीवन का हेतु बना हुआ है, उसके 7 स्थानों का 7 रूपों का वर्णन हो चुका है। आज उसके 3 रूप 3 स्थान और प्रधान रूप से हैं। एक है स्नेहे और दूसरा है श्वेत और तीसरा है मूत्र। ये 3 स्नेहे जो है, अब ये जो इतनी यहाँ ग्रंथियां थी, एक प्रकार से रजय प्रधान कार्य था। यहाँ ऊपर का सप्त प्रधान जल का भाग था, नीचे का यहाँ का रजय प्रधान था और अवतना प्रधान जल। तो स्नेह जो है, चिकनापन जिसको कहते हैं, जो कि तेल और घृत से हमें प्राप्त होता है इस शरीर के लिए आहार के रूप में, स्निग्धता भी आवश्यक है इसके लिए। परंतु पशु आदि ये कौन सा घी दूध खाते हैं, स्नेह चर्बी उनमें भी बड़ी काफी होती है और हमारे अंदर भी स्नेह का भाग बहुत है। अब जैसे ये मज्जा और मेद जो है, मज्जा भी एक प्रकार की चर्बी होती है, मेद भी है, तो ये सब स्नेह का ही भाग है। तो ये स्नेह से हमारे शरीर की में लचक रहती है और स्नेह जल का ही धर्म है। आप कहीं जहाँ दरियाए बहते हों, पानी पड़ा रहता हो, तो बहुत से बर्तनों में भी किनारों किनारों पर चिकनाहट जम जाया करती है। वर्षा के ऋतु में जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, वहाँ भी फिसलन स्नेह के कारण हो जाया करती है। तो जल का स्वाभाविक धर्म जैसे और गुण है, मधुर आदि गुण है जल के, ऐसे स्नेह भी प्रधान गुणों में एक गुण है इसका। और ये जल का ही परिणाम है। दूध के अंदर भी और वनस्पतियों में भी जाकर के इसका जो विशेष रूप से वास हुआ है, जैसे तिल है, सरसों आदि है, तो ये सब जल का ही भाग विशेष है, परिणाम विशेष है। जैसे जल का परिणाम विशेष होकर चर्बी के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया, ऐसे तिलों तिल सरसों आदि ये जो ऑयल तेल वाले पदार्थ होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, उनमें स्नेह भी ऐसे जा करके जम जाता है। और ये जल का ही परिणाम विशेष और विकार विशेष और गुण विशेष है। ये स्नेह भी हमारे जीवन का हेतु बना रहता है। जैसे शरीर में रोग विशेषों से खुश्की पैदा हो जाया करती है, तो घृत पान आदि कराया करते हैं, स्नेह पान कराया करते हैं और वैद्य लोग स्नेह से स्नान कराया करते हैं, तो इससे शरीर में चमक आती है। जो तेल की मालिश करने वाले होते हैं, उनके शरीर में चमक पैदा होती है, कोमलता नरमी पैदा होती है, स्नेह जो है शरीर में लचक पैदा करता है। तो इसलिए स्नेह आदि का जो हम सेवन करते हैं, जैसे और पदार्थ हमारे लिए पार्थिव पदार्थ अन्न आदि जो हैं, ये पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले हैं और ये जो स्नेह है ये जल से उत्पन्न होने वाला है, चाहे पार्थिव पदार्थों में चला जाए और उसकी वनस्पति आदि में परंतु है ये जल का ही गुण विशेष। तो इसलिए स्नेह भी हमारे जीवन का आधार है, जब कभी ना गर्मी हुआ करती है, बात रोक वाले होते हैं, उनकी सदा नाक खुश रहा करते हैं, तो वो बादाम रोगन या घृत आदि को ऐसे सूंघा करते हैं तो नाक आदि की इसकी मस्तिष्क की खुश्की दूर हुआ करती है। जिनके मस्तिष्क ज्यादा खुश्क रहते हों उनको जैसे बादाम रोगन आदि चीजें हैं ऐसी, उनको सूंघने से मस्तिष्कों में और कंठ आदि में इनमें तरावट रहने लगती है। तो इसलिए स्नेह जो है शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और ये जो हमारे मेद वगैरह बढ़ते हैं बड़े बड़े सेठों के लालों के, इनमें स्नेह ही जम जाता है। अब वो निकल तो पाता नहीं, अब वो पेट की इनकी इसमें बाहर की जो नीचे की चमड़ी है इसमें आन करके वो जमने लगता है, मेद बढ़ने लगता है। अगर इसको निकाला जाए तो चर्बी निकलेगी उसमें से। तो इस प्रकार ये स्नेह देर से पचता है, ये स्नेह आदि इसमें रस कुछ नहीं बनता। स्नेह की सीधी चर्बी बनेगी या मज्जा बनेगी या मेद बनेगा या कुछ वीर्य का रूप भी बनता है। वीर्य और रज में भी स्नेह होता है, वीर्य में भी स्नेह होता है। ये चिकनाहट जो है ये जैसे और चीजों का जिनके साथ में जल का भाग ज्यादा होता है उनका तो रस बनता है, अन्नादि का भी रस बनता है, और ये जो घृत और तेल है ये शरीर में पाक भाव को प्राप्त होकर के इनका रस नहीं बनता। ये सीधे ही जाकर चर्बी के साथ मिल जाते हैं या टट्टी के रस्ते निकल जाते हैं, पेशाब के रस्ते भी निकल जाते हैं। तो ये स्नेह जो है इसका रस वैसा नहीं बनता है जैसे वनस्पति औषधि सब्जी आदियों का रस बन करके पाक भाव को प्राप्त होकर के बनता है। तो ये सीधा ही इसका इस प्रकार का पाक नहीं होता है। सब्जियों के साथ में भी जब हम बनाते हैं इसका वैसा पाक नहीं होता, दूसरे रसों के साथ में मिलकर के उनको भी स्नेहयुक्त सा बना देता, सब्जियों को स्नेहयुक्त बना देता। इसलिए स्नेह भी हमारे शरीर के लिए बहुत पोषक है, जीवन का आधार बना हुआ। इसी प्रकार श्वेत पसीना, पसीने के छह स्थान हमारे शरीर के अंदर है जिन जिन में प्रधान रूप से ये ठहरता है। एक तो मस्तिष्क, जब हम कोई बल युक्त या गर्मी जब आती है, गर्मी का मौसम आता है या कोई काम ज्यादा हम करते हैं तो एक तो माथे पर पसीना पहले आता है, फिर छाती पर आता है, तो ना पहले मस्तिष्क पर आता है, फिर यहाँ कंठ पर आता है, फिर छाती पर आता है, इन बगलों में आता है और जंघा में आता है, और ये जो घुटनों के जोड़ हैं ये छह स्थान श्वेद को पकड़ करके रखने वाले हैं। इनमें जल्दी पैदा हो जाता है और गर्मी के मौसम में तो सारे शरीर से भी बहुत बार ऐसा आता है, हम ज्यादा दौड़ करते हैं तो सारे होता रहता, क्योंकि जल पतला द्रवित होता है, स्नेह भी इससे निकलने लगता है। जो ज्यादा घृतादि पान करने वाले होते हैं उनकी त्वचा वगैरह सारा शरीर बड़ा स्निग्ध सा रहा करता है, तो स्नेह भी रोम कूपों से निकलने लगता है और रोम कूपों से जाने भी लगता है। ये जो मालिश वगैरह करते हैं ये रोम कूपों से या स्थानों से इन छिद्रों से अंदर प्रवेश कर करके शरीर का पोषक हुआ करता है। इसलिए स्नेह रोम कूपों से भी जाता है और जल भी बाहर से भी जाता है, जैसे बहुत शीत प्रधान वगैरह दे होते हैं बर्फ की जगह हम जाते हैं तो वहाँ शीतता भी जाकर जल आदि को या जल भी चला जाता है। तो जल का गमना गमन अंदर और बाहर इन रोमों से भी होता है, जैसे पसीना एकदम गर्मी आए कहीं ऐसी जगह चले जाए, किसी हमाम में जाए जहाँ पसीना लेना होता है तो सारे शरीर में से बह करके निकलने लगता है। तो इसलिए श्वेत जो है श्वेत के रूप में भी सारे शरीर में वर्तमान रहता है और प्रधान रूप से इन छह स्थानों में वह ये जल का भाग रहता है। अभ्यासियों को रोज स्नान करना चाहिए। पश्चिम के लोग स्नान कम करते हैं, जो है भाग जल का पेशाब जिसको कहते हैं मूत्र। अब आपको ये ध्यान करना चाहिए अभ्यास के समय में क्योंकि आत्म साक्षात्कार करना, जैसे जहां बहुत सर्दी होती है अगर वहां ठंडा पानी पिया जाए, या जिसको आदत ना हो सवेरे दो गिलास पानी पियो ठंडा, थोड़ी देर के बाद आधे घंटे घंटे के बाद पेशाब आता है। तो अब ये देखना कि ये जो जल पिया गया है इस प्रकार का, ये मूत्र में कुछ स्वाभाविक ही पीलापन होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सब चीजों से इसका पाक होकर के अंतिम ये क्षार युक्त सा रस होता है निकल करके बहता है पेशाब के रूप में, गुर्दों में आन करके ठहर करके वहां से चलता है। तो अब सारे इतने शुद्ध पवित्र जल का, शीतल जल का परिणाम होकर के जो ये पेशाब बन करके शरीर से निकला है, किस प्रकार इन संस्थानों में मुंह से यहाँ लेकर के तीन तो ऊपर सात तो यहाँ से नीचे के जल के स्थान है ना, तो इन सात जलों में से छह स्थानों में से सात में आन करके इस प्रकार का परिणाम भाव कैसे इनमें होता हुआ आया है। अगर ये फिलॉसफी, ये विज्ञान तुम्हारी समझ में आ जाता है कि किस प्रकार ये परिणाम भाव को प्राप्त होकर के जल ऊपर से चला और नीचे पेशाब के रास्ते से ये निकल गया है, अगर ये विज्ञान समझ में आ जाता है तो शरीर का विज्ञान भी समझ में आ जाएगा। और शरीर के विज्ञान के साथ में ही, क्योंकि आत्मा का इसके साथ संबंध है, मैंने रात भी एक दृष्टांत दिया था, जैसे ये आकाश है, अब आकाश के समान कोई एक और सत्ता हमारे शरीर में, इसी तरह जैसे इस ब्रह्मांड में आकाश खड़ा है और स्थूल पदार्थ वायु अग्नि जल पृथ्वी इसमें गमन करते हैं, चलते फिरते हैं, हमारे जीवन का आधार भी बनते हैं संसार में रह करके, ऐसे ही ये पंचभूतों के भाग इस शरीर में प्रवेश कर करके इसके जीवन का आधार बन करके परिणाम भाव को प्राप्त होकर के किस प्रकार से निकलते हैं, ऐसी कौन सी चेतन सत्ता है जो आकाश के समान हमारे शरीर में खड़ी हुई है, ठहरी हुई है, स्थिर है और इसके साथ ही चलती फिरती भी है। क्योंकि अगर मेरे साथ वस्त्र पहने होंगे तो शरीर के साथ ही चले फिरेंगे, तो इसलिए आकाश जो है, ये आकाश जहाँ हमें अवकाश देता चला जाता है, इसीलिए इसकी व्यापकता सिद्ध होती है। जिस जैसा इस देश का आकाश है, ऐसा ही इनके अंदर भी आकाश ओत प्रोत होकर के लकड़ी से भी पार कर गया, तभी तो हमारे शब्द बाहर निकल करके चले जाते हैं, मकानों से भी थोड़े बहुत कहीं जरा सा भी सुराख हो उससे बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे आकाश है सूक्ष्म होने से सर्व सबको प्रवेश कर करके निकलता है, ऐसे चेतन सत्ता भी इन सब शरीर के अंग प्रत्यंग आदि स्थानों को संस्थानों को पदार्थों को प्रवेश कर करके ठहरी हुई है, निकली हुई है, इसके अंदर और बाहर है। जब परमात्मा की व्याप्ति तो तब सिद्ध होगी, इस पोल में भी उसकी व्याप्ति हो और हमारे शरीर के ठोस पदार्थ में भी उसकी व्याप्ति हो, तो परमात्मा की व्याप्ति तो तभी सिद्ध होगी। इसलिए आकाश की व्याप्ति भी सर्वत्र सिद्ध हो रही है और परमात्मा की व्याप्ति पर, परमात्मा की व्याप्ति में आकाश की व्याप्ति में कुछ अंतर मानना पड़ेगा जड़ और चेतन का। अब जैसे अग्नि है जल से स्थूल है तो जल को व्याप्त कर लेती है, तो जड़ जड़ को भी तो व्याप्त करता है, परंतु क्योंकि ये आकाश भी उत्पन्न होने वाला है, भले इन चार पदार्थों की निष्पत्ति ये दिहू है, इसके तीन गुण होते हैं, एक तो दिहू रचना, अवकाश जो आकाश जो है इसमें पदार्थों की रचना होती है, और एक ये अवकाश प्रदान करता है, हमारा चलन होता है गमन होता है इसमें चलते हैं, और एक ये भेदन कर करके व्याप्त होकर के पार कर जाता है। तीन प्रधान गुण इसके अंदर है, एक तो रचना, एक भेदन करके प्रत्येक को पार निकल जाना और एक अवकाश देना, ये तीन प्रधान गुण इसके अंदर हैं। तो बहुत से लोगों ने ये तीन गुण भगवान के अंदर भी मान लिए, क्योंकि सारे पदार्थों के अंदर उसकी व्याप्ति है। तो खैर वो क्योंकि उसकी आकाश में तो ये ठीक है क्योंकि सारे पदार्थ उसमें ठहरते हैं, तो एक प्रकार से भगवान के अंदर भी, क्योंकि जैसा इस देश का आकाश है ऐसे सर्वत्र है, जैसा इस देश का भगवान है ऐसे शरीर के देश का, ऐसे बाहर के ब्रह्मांड का भी वैसे ही चेतन सत्ता सर्वत्र व्यापक है। कभी तो ये सारे ब्रह्मांड के पदार्थ गतिशील रहते हैं। जब तक चेतन सत्ता का हमारे शरीर में संबंध रहता है तब तक ये सारे कर्म व्यवपार इसमें पाचन आदि के चलना करना बोलना कर्म करना सब व्यवपार होते रहते। और जब चेतन का अभाव हो जाता है तो ये 5 मिनट या 1 मिनट के अंदर मुर्दा होकर के ये शरीर ठहर जाता है। जल भी इसमें वर्तमान था, अग्नि भी वर्तमान थी, वायु प्राण भी वर्तमान था, सब ठप हो गए। सब अपने अपने प्राण इस वायु में मिल गया, अग्नि इस बाहर की अग्नि में मिल गई और जल अभी पड़ा है वो इसके साथ मिल जाएगा, जलने पर खत्म हो जाएगा और भस्म बना दी जाए तो उसमें या कब्र में जाकर हड्डियां रह जाएंगी। तो इस प्रकार ये परिणाम भाव होता रहता है। तो ये परमात्मा की व्याप्ति इसके अंदर सर्वत्र, क्योंकि हम आत्मा की बात ना कहके परमात्मा को आप ज्यादा महत्व तो देते हैं, परमात्मा तुम्हें सब जगह मिल जाएगा, शायद आत्मा तो अनुवाद मानने वाले के कोने में ढूंढना पड़ेगा, तो परमात्मा तो वैसा ही चेतन सर्वत्र मिल जाएगा। तो इसलिए परमात्मा की खोज कर लो जो तुम्हें मस्तिष्क में भी मिले, हृदय में भी मिले, पैरों में भी मिले, हाथ में भी मिले, तो सर्वत्र उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो किस प्रकार उस चेतन के आश्रय पर ये शरीर ठहरा हुआ, किस प्रकार इस चेतन के आश्रय पर कौन सा पदार्थ है, जैसे आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप से इस अवकाश आकाश को देख रहे हो, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से उस चेतन इसके समान व्याप्त, इसके समान विभू, इसके समान रचना कराने वाला, क्योंकि सारा विश्व सारा ब्रह्मांड उसके गर्भ में ठहरता है और वो अंतिम छोर अंदर और बाहर बीच और ऊपर एक समान है, ऐसी कोई चेतन सत्ता माननी पड़ेगी। क्योंकि हमेशा गति संयोग से उत्पन्न होती है, जब तक दो पदार्थों का संयोग नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। मोटर के साथ भी जब तक चेतन का संयोग नहीं होगा मोटर नहीं चलेगी, और पदार्थ भी गड्डी घोड़ा आदि यान आदि उनके साथ चेतन का संयोग नहीं होगा नहीं चलेंगे, भले ही हमारे बनाए हुए हैं परंतु फिर दोबारा उनको चेतन के संयोग की जरूरत रहती है। या चाबी वाबी दे के रख दिया जाए बहुत देर तक घड़ियां चलती रहती हैं ऐसे, पर ये है सब चेतन के कार्य। तो इसलिए जड़ और चेतन दो ही पदार्थ संसार में सिद्ध होते हैं तो इनका सदा संयोग रहता है। अब यहाँ तो संयोग है इस शरीर का क्योंकि शरीर उत्पन्न होकर के आया है, ये तो टेम्परेरी कुछ वर्षों के लिए ये संयोग है। और इस ब्रह्मांड का संयोग जो दृश्यमान संयोग संसार है इसके 10, 12, 20 अरब माने गए हैं, तो तब तक संयोग मान लो, परलय काल की अवस्था में जब ये कारण में चला जाएगा वहां संयोग वहां भी वर्तमान रहेगा, इसका इसके संयोग का अभाव नहीं होगा। जैसे इस आकाश के संयोग का पृथ्वी के साथ हमारे शरीर के साथ भी इसका अभाव नहीं होता, मुर्दे शरीर में भी आकाश वर्तमान रहता है और चेतन में भी वर्तमान है। तो जैसे इसका अभाव यहाँ नहीं होता ऐसे चेतन का अभाव न किसी भी अवस्था में हुआ, ब्रह्मांड में संसार में कार्य कारण रूप की अवस्था में सदा संयोग बना रहे। उससे ऊपर हो गया है यहाँ साधना प्रारंभ हुए, आज 6 तारीख है। प्राण को माध्यम बना करके और वायु को माध्यम बना करके परमात्मा की उपासना उसके ज्ञान का 1 सप्ताह वर्णन चलता रहा था। उसके पश्चात फिर अग्निभूत को लिया, अग्निभूत जो हमारे शरीर में भी है और बाहर भी है, दोनों प्रकार से आध्यात्मिक अग्नि को भी भौतिक अग्नि को भी लेकर के प्रवचन करता रहा था। और आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार के साधन इसके माध्यम से बतलाए थे। तीसरे में फिर उसके पश्चात आया जल का, अब ये 3-4 दिन से जल के विषय में चल रहा है। सायंकाल को थोड़ा और इस पर विशेष रूप से कथन कर करके अब कल से पृथ्वी तत्व भी हमारे शरीर की रचना में है। जैसे प्राण तत्व वायु का विकार विशेष, प्राण जो है हमारे जीवन का आधार है, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार ही शरीर में पृथ्वी भी प्रधान रूप से है। तो पृथ्वी को माध्यम बना करके किस प्रकार आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है और किस प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज हैं, इन दो शरीर से आत्मा भी सूक्ष्म है, ब्रह्मांड से परमात्मा भी सूक्ष्म है। तो इतने सूक्ष्म को जानने के लिए पहले स्थूल विज्ञान को अध्ययन करना पड़ेगा। जिस अभ्यासी की समझ में शरीर की रचना, शरीर का विज्ञान समझ में नहीं आएगा, उसको आत्मा भी समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए आवश्यक होता है कि वह शरीर का विज्ञान भी वैसा ही आवश्यक है जैसा, एक तो शरीर का विज्ञान होने से इस पर सदा कंट्रोल बना रहता है, आहार व्यवहार आदि इसके ठीक बने रहते हैं और मनुष्य के कंट्रोल में रह करके ठीक कार्य करता रहता है। और अगर बुद्धिमान पुरुष होता है तो इसको लंबा, इसका जीवन लंबा भी बना सकता है, क्योंकि उसको सब प्रकार का इसके हानि और लाभ का ज्ञान होता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। और योगी को तो प्रथम तो अपने शरीर का ही ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मोटा ताजा देखने में आता है, आंखों का विषय, सब इंद्रियों का विषय है। इसके बाद में अगर और दूसरा सूक्ष्म शरीर मानते हो तब उसका भी ज्ञान करना होगा, क्योंकि आत्मा भी सूक्ष्म है, शायद क्या पता उसी शरीर में ही रहता हो, यह एक कोश ही हो। जैसे पंच कोश इस शरीर के ऊपर है, ऐसे इस शरीर के भी तीन कोश तो कम से कम है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उन कोशों के अंदर बैठा है। जैसे किसी एक मंदिर में, हम दक्षिण में कई बार गए हैं, तो दक्षिण के मंदिरों में कोट होते, किले जैसे दीवारें होती है, दस दस आठ आठ नौ नौ, तो ऐसे ही अंदर जाकर के मंदिर की मूर्ति बनाई जाती है हिफाजत में। तो यह मंदिर की मूर्ति रूप तुम्हारा आत्मा और परमात्मा गया इस शरीर के अंदर वर्तमान है, बैठे हैं, सबके मध्य में जाकर के सूक्ष्म रूप से अगर एक देश में भी स्थिति मानोगे तो बीच में सेंटर यही स्थान आता है, ऊपर के नीचे के भाग में। आज तुम तो ऐसे स्थान में स्थूल को उल्लंघन करके बड़े द्वार को शरीर के तभी तो खोलोगे जानोगे जब तुम्हें इसका विज्ञान होगा। तो इसलिए शारीरिक विज्ञान बड़ा आवश्यक है योगी के लिए। जब तक शरीर का विज्ञान नहीं होगा आत्म विज्ञान नहीं होता फिर, क्योंकि आत्मा और बहुत सूक्ष्म है। जैसे बुद्धि और मन है, बातें तो सब मन और बुद्धि की, पर अगर तुमसे पूछा जाए कि उसका आकार कैसा है, उसका प्रकार कैसा है, उसका रंग कैसा है, किस देश में वो कार्य करता है, कौन कौन सी उसकी अवस्थाएं हैं, कैसे उसमें विकास होता है, ये बातें बताने में समर्थ हो जाओगे, क्योंकि उसका भी ज्ञान ही नहीं हुआ। जब ऐसे मन और बुद्धि जो सूक्ष्म है इस शरीर से भी उनका ज्ञान होगा तो आत्मा और परमात्मा तो उनसे भी सूक्ष्म है। तो जब तक तुम्हें मन बुद्धि और इंद्रियों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा का भी ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए इंद्रियादि बुद्धि आदि जो है, भले ही अगर तुम स्थूल शरीर का भी एक देश मान लो बुद्धि का स्थान और मन का स्थान, तो वहां जाकर के किस प्रकार वहां गतिविधियां होती है उस प्रदेश में, मस्तिष्क के डॉक्टर तो शायद चीर फाड़ करके ही देखते होंगे, परंतु पता नहीं जीवित में वो कैसे फाड़ करके देखते होंगे, कैसे वहाँ वाइब्रेशन वगैरह उनको नजर आती होंगी, आते होंगे यंत्रों के द्वारा। पर योगी को तो, वैसे मैंने कौन सी डॉक्टरी पढ़ी है वैद्य, मैं भी तो तुम्हें शरीर विज्ञान की इतने बातें सुना रहा हूँ, आखिर खुद पढ़ी देखी समझी बातें तो बतला रहा हूँ। कभी कोई पुस्तक भी तुमने शायद पकड़े नहीं देखा होगा, कई वर्षों से मैं पढ़ता ही नहीं पुस्तक पुस्तक। तो ये एक एक बात को लेकर के कितना विस्तार में कर देता हूँ, पंचभूतों का और शरीर का कितना विस्तार, एक महीने से इसी के विषय में प्रवचन चल रहा है और अभी तो बड़ा इसके विषय में। जब मैं ये तो भौतिक शरीर के आधार को लेकर के कह रहा हूँ और इसके बाद में सूक्ष्म शरीर के आधार को लेकर के विज्ञान का आत्मा के विषय में वर्णन करूंगा, उसके लिए भी ऐसी धर्म नचमे निवृत्ति के नापि देवे नियोजिता में यथा नियुक्तो सी तथा करो। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण उनको उपदेश देने लगा कि तू इतना बड़ा तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है और गृहस्थ में बहुत ऊंचे दर्ज का आदर्श युक्त है, एक स्त्री के पीछे तू रोता फिरता है मैं और तेरा जाकर के लादवी से भी अच्छी। तो लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तू मुझे क्या उपदेश देता, क्या समझाता कि मैं धर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, मैं अधर्म के स्वरूप को भी जानता हूँ पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती। केनापि देवे नियोजित, कोई ऐसी प्रबल शक्ति है, प्रारब्ध के भोग इतने प्रबल या बलवान है, या वो परमात्मा कुदरत कोई ऐसी शक्ति है जो नियोजिता में यथा, जैसे वो मेरा कान पकड़ कर नियोजित करती है, जाल लगाना चाहती है, वहां मैं लगता हूँ, मेरी कोई पेश नहीं जाती। तो यथा नियुक्तोसी, जैसे वो नियोजन करते हैं, जैसे वो लगाते हैं, उसी तरह मेरी प्रवृत्ति होती है। सो ये आवान करके बहुत सी बातें ऐसी समझ में आती हैं अंत में कि पता नहीं कुछ कुदरत का ये कर्मों का सिलसिला ऐसे चलता ही रहता है। हरेक मनुष्य सदा उन्नति के लिए चेष्टा करता है, बढ़ने के लिए चेष्टा करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता है। तो शनै शनै सफलता मिलती है, शनै शनै सफलता मिलती है। जब कार्य क्षेत्र तैयार होता है भोगों का, तब सैकड़ों संस्कार मूर्छित होकर इकट्ठे होकर प्रधान प्रधान, वो कहता मैं भोग दूं, वो कहता मैं भोग दूं, वो जैसे कोई चीज भट गई पहले सब हाथ पसारते हो। तो ऐसे यहाँ कर्म के विषय में है, जब कार्य क्षेत्र तैयार होता है कर्म करने के लिए, तो उसकी जाति के प्रधान प्रधान बहुत से कर्म इकट्ठे होकर के फलोन्मुख हो जाया करते। तो यहाँ आदमी आन करके विवश हो जाता है। अब देख लो, जितने राम इतना ऊंचा हुआ उसकी क्या दशा हुई, कृष्ण मारे मारे फिरते रहे, सारी जिंदगी संघर्ष में बीती, उनका जीवन कैसा। ऐसे जितनी महान आत्माएं हुई हैं, क्या मोहम्मद, क्या क्राइस्ट, क्या दयानंद, क्या और आचार्य, प्रधान प्रधान जो धर्मों के संस्थापक हुए हैं, अपने अपने सब के जीवन में बड़ी कठिनाइयां आई, बड़े संघर्ष से जीवन बीते। तो जिनका जीवन संघर्ष से बीतता है, उनके कार्य क्षेत्र वैसे तैयार होते हैं, और उसकी जाति के प्रधान प्रधान कर्म सम्मूर्छित होकर प्रधान कर्मणि अवापगमनम वा, ऐसे शब्द आते हैं इसके लिए कि प्रधान कर्म एक होता है और उसकी जाति वाले, जैसे एक राजा होता है, एक सेना नायक होता है, और उसके पीछे हजारों लाखों सेना लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है उसके साथ में चलने के लिए। इसी प्रकार प्रधान कर्म के साथ में उसकी जाति वाले सैकड़ों कर्म मूर्छित होकर के उसको अवसर ही नहीं देने देते। जो जो आदमी जिस विषय में लगा हुआ है, उससे उसको अवकाश ही नहीं मिलता। वो इतना आसक्त और ग्रस्त रहता है उसमें कि उसकी जाति, जैसे मैं कर्म कर रहा हूँ तो मेरी जाति वाले जो कर्म है, मुझे ये बनाओ, वो आश्रम में जाओ, वहाँ ये कर्म करो, ये साधना कराओ, ये सब कुछ करो, उसकी जाति के कर्म इकट्ठे और आते जाते हैं, और विचार उसी जाति के आते रहते हैं, और वो भोग देने में जबरदस्ती कर्म कराने में प्रवृत्त कर देते हैं। इच्छा न होने पर भी कर्म करने पड़ते हैं। फिर मन को समझाना होता है कि कर्म का तो अभाव होना नहीं, जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, टट्टी पेशाब भूख प्यास निद्रा वहां भी रहेंगे। अगर इन कर्मों को भी टट्टी पेशाब भूख प्यास की तरह समझ करके इनको भी करता जाए तो क्या आपत्ति है, तो ये समझा के संतोष होता है और कोई बात नहीं।
धर्मम नच में प्रवृत्ति ही जाना में धर्मम नच में निवृत्ति केना भी देवे न हृदय स्थिति न यथा न युक्त अस्मि तथा प्रवृत्ति।
इसलिए जब तक शरीर है तीनों या एक भी, कर्म का अभाव नहीं होगा इसमें, कर्म तो कुछ न कुछ करते ही रहना है। फिर बंधन का हेतु हमारे कर्म नहीं होता, अज्ञान होता है। तो उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए आप सब लोग इस साधना में एकत्रित हुए हुए हैं, इस शिविर में आए हुए हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि किसी तरह हमारे हृदय से वो अंधकार, वो अज्ञान दूर हो जाए, जिससे कि हम आत्मा और परमात्मा को प्रत्यक्ष देखें, जैसे इन्हीं आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति कब होगी, जब ऋतम भरा बुद्धि पैदा हो जाएगी। जो पहले प्रजालोक नाम की बुद्धि, पहले विशोका नाम की बुद्धि पैदा होती है, और फिर प्रजालोक नाम की बुद्धि होती है, और फिर ऋतम भरा नाम की बुद्धि होती है। तो ये पहली जो है विशोका ज्योतिषमती, ये तो इंद्रिय मन आदि सूक्ष्म शरीर के विज्ञान को कराती है, और ये जो दूसरी है प्रजालोक नाम की बुद्धि, ये और सूक्ष्म शरीर के और बुद्धि के विज्ञान को कराती है, और आगे जो ऋतंभरा नाम की बुद्धि है वो चित्त में आत्म दर्शन और ब्रह्म दर्शन को कराती है। तो जब तक रितम भरा, ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म मात को दृश्य वृश्य आते रहते ना, किसी को ज्योति आ गई, किसी को लाइट आ गई, किसी को सूक्ष्म संत महात्मा विचरते हुए आकाश मंडल में आ गए, किसी को इसमें बाग बगीचे वन पहाड़ आदि ऐसे देखने में आ गए, किसी को ऋषियों के देवताओं के समूह से चलते चलते नजर आ गए। ये सब सूक्ष्म जगत का व्यवहार होता है और ये इस प्रजालोक बुद्धि में जा करके ये देखा करता है योगी। इसके आगे जब उनसे भी चित्तोपराण हो जाता है, जैसे संसार के स्थूल भोगों से, स्थूल शरीर से इनसे उपराण हो जाता है और आदमी अंतर की ओर चलता है, तो उस सूक्ष्म जगत से भी एक और वैराग करना पड़ता है, वह उनके भी देखने और भोगने की प्रवृत्ति ना हो। तो फिर अंत में आन करके उसके पश्चात जब सूक्ष्म जगत के भोगों की से भी चित्त उपराम और उदासीन हो जाता है, तो फिर रितंभरा बुद्धि के द्वारा फिर वहाँ आत्म साक्षात्कार होता है। अहम अस्मि ये मेरा स्वरूप है, या तुम असि ये भगवान तुम है। तो ये रितंभरा बुद्धि तुम्हें अभ्यास के द्वारा कोई समय आ जाएगा इसी तरह लगे रहे तो तुम्हें ये बुद्धि पैदा हो करके आत्म दर्शन की योग्यता। विषयों का नाम के विज्ञान के उत्पन्न होने पर विषयों का ज्योतिषमति एक प्रकार की बुद्धि या विज्ञान ही है। तो इस बुद्धि के उदय होने पर, इस विज्ञान के उदय होने पर स्थूल शरीर का साक्षात्कार होता है और इसका विज्ञान होता है और इसकी जो स्थूल इंद्रिय हैं उनके भोगों का, उनके विषयों का, और इस स्थूल शरीर से वैराग होता है विषयों का ज्योतिषमति के उदय होने पर। और प्रजालोक बुद्धि के उदय होने पर सूक्ष्म शरीर का ज्ञान, उसके भोगों का ज्ञान, स्वर्ग का विज्ञान, स्वर्ग में बहुत भोग मानते हैं सभी संप्रदाय सूक्ष्म शरीर के द्वारा, तो उस बुद्धि के उत्पन्न होने पर सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म शरीर का विज्ञान और वैराग होता है। और फिर रितंभरा बुद्धि के उत्पन्न होने पर आत्मा परमात्मा और प्रकृति का विवेक होता है और उसका विवेक होने पर, उसका ज्ञान होने पर, उसके स्वरूप का पता लगने पर फिर उसको प्रकृति से भी उदासीन होना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति से ही आन आन के संस्कार यहाँ भोग देने के लिए बने रहते हैं, तो वहाँ उस प्रकृति से भी उदासीन हो जाता है, फिर जा करके इसके मोक्ष की बात बनती है। तो वहाँ कारण शरीर से बैराग करना पड़ता है, कारण शरीर का ज्ञान भी करना पड़ता है और उससे बैराग भी। कारण शरीर की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, इसलिए प्रकृति का ज्ञान और उससे वैराग करना होगा। तो जब अंत में जाकर के रितंभरा बुद्धि निर्णय दे देती है प्रकृति का ये स्वरूप है, आत्मा का ये स्वरूप है, परमात्मा का ये स्वरूप है, तो वो रितम विभर्ती रितंभरा जो सत्य को धारण करने वाली हो, सत्य ज्ञान को देने वाली हो, तो उस अवस्था में जाकर के फिर कारण शरीर और इसका उपादान जो प्रकृति उससे भी परम वैराग होकर के और मोक्ष में स्थिति होती है। पास में सवा महीना हो गया ये विषयों का ज्योतिषमति और प्रजालोक बुद्धि के विज्ञान का जो विषय है उन विज्ञानों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। जैसे पहले प्राण को लेकर के और उसके 70 प्रकार के भेद करते हुए 10 प्रकार के प्राणों को इस शरीर में स्थान भेद से वर्णन करते करते प्राण को माध्यम बना करके, क्योंकि ये प्राण जो है स्थूल शरीर का विषय है और अंदर सूक्ष्म का भी है, तो पहले ये जब विषयों का ज्योतिषमति हो जानी चाहिए इसके विज्ञान के लिए, ये एक प्रकार का आलोक साहब जब ध्यान में बैठते पैदा होता है एक प्रकार से ये उसका ही स्वरूप सा होता है, परंतु उस इस प्रकार के प्राण को लेकर के प्राण बाह्य भौतिक वायु है शरीर में आध्यात्मिक प्राण के रूप में प्रवेश कर गई है बन कर गई, तो इस प्राण को माध्यम बना करके हम परमात्मा के साथ स्पर्श करना, मेल करना जानना चाहते थे, टच करना चाहते थे, तो उसके साधन बतलाए वह स्थूल शरीर के द्वारा और ये विषयों का ज्योतिषमति उदय होने पर प्राण का ज्ञान होने लगता है, क्योंकि प्राण भौतिक है, स्थूल शरीर से इसका संबंध है। इसी प्रकार ज्योति को माध्यम बनाया था ज्योति एक प्रकार से 80 प्रकार की 82 प्रकार की वर्णन की थी, सारी में वर्णन नहीं कर पाया, थोड़ा थोड़ा किया है। तो उसके बाद में अब 5-6 दिन से ये जल भूत को लिया हुआ है। अब जल भूत भी जैसे अगर इसका विवेचन किया जाए, विज्ञान किया जाए, जो मैंने 3 प्रकार के जलों का वर्णन किया था, एक तो जल वो जो टपका करता है जब खेचरी मुद्रा होती है, खेचरी मुद्रा के समय में जो एक मधुर सा रस टपका करता है, एक उसका, तो वहां एक प्रकार ओजस जैसी अवस्था हुआ करती है और मधुर शराब सा हुआ करता है। उसके बाद में प्रभा नाम के जल का वर्णन किया था, उसके बाद में हुआ रसना के नाम, ये 3 जलों का वर्णन किया था। तो इस स्थान में ये तीनों 3-3 प्रकार के हो जाते हैं, सात्विक राजस और तामस भेद से। तो जब खेचरी मुद्रा के द्वारा सूक्ष्म मानसिक प्रणव को लेकर के वहां जाप किया जाता है तो वो तो सप्त प्रधान होता है, उस वक्त साक्षात रूप से उसका संबंध हुआ चेतना के साथ, जिसके नाम को हम उच्चारण कर रहे हैं, वो जागृत ची होकर के उसके साथ उसका स्पर्श होकर के, और जैसे उसमें खुल मिल करके कोई चीज आ रही और फिर नीचे ही गिर रही हो, ऊपर जल फेंकोगे तो किसी चीज में मिल करके ऊपर नीचे ही आ जाएगा। तो इस प्रकार वो जो प्रणव शब्द होता है वहाँ ये जो मधुर रस होता है, जल होता है, वो जल चेतना के साथ खुल मिल करके और हमारे अंदर वो टपकता हुआ स्पर्श के द्वारा उसकी अनुभूति हुआ करती है। ये तो सप्त प्रधान होता है। और रजय प्रधान जब होता है, जब हम उपांशु प्रणव के साथ में मंत्र का जाप करते हैं, उपांशु में होठ फरका करते हैं और उसमें केवल मन का ही, मन की गतिविधि के द्वारा प्रणव उच्चारण हुआ करता है, तो ये कुछ रजय प्रधान हो जाता है। और जो वाणी के द्वारा प्रणव का उच्चारण कर करके हम उसका जोर जोर से ज्ञान करना चाहते हैं, जैसे कीर्तन आदि, इसमें भी मन बड़े समाहित हो जाया करते हैं, तो ये उनकी अपेक्षा कुछ ये तमय प्रधान होता है। तो ये 3 प्रकार का रस यहाँ इस ब्रह्मरंध्र के अंदर सात्विक राजस तामस भेद से भिन्न भिन्न रूप से ये हमारे विज्ञान का हेतु बन जाता है, सात्विक राजस और तामस भेद से। अमृत जो रस है, जल है, ये सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का यहाँ हो जाता है और इसकी तीनों समाधि की अवस्था तीनों में आती है, मानसिक जाप में भी आती है और उपांशु में भी आती है और वाणी के उच्चारण कर करके भी समाधि अवस्था आती है। तो यहाँ 3 अवस्थाएं बनती हैं फिर, ध्याता, ध्यान और ध्येय। जिस वक्त सुख सप्त प्रधान होता है और अमृत को ग्रहण करता है तो उस वक्त केवल ध्येयाकार वृत्ति रहती है, वहां केवल उस अमृत रूप रस का ही भान रहता है, कुछ नहीं। और जब उससे और नीचे उतर के आता है, उपांशु जाप में जब आता है, तब ध्यान का भी पता रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं इस अमृत रूपी रस के द्वारा परमात्मा का। तो यहाँ दो पुट रहते हैं, पहले में एक पुटी रहती है, दूसरे में 2 पुटी, फिर त्रिपुटी में आ जाता ध्याता, ध्यान और ध्येय। ये जो कीर्तन के द्वारा उच्चारण कर कर करके शब्दों को, ये एक प्रकार से तमसी अवस्था आती है, पर यह भी समाधि का हेतु बन जाती है, कीर्तन में भी समाधिस्थ हो जाया करता है। मैं देखता था वहां वृंदावन में, पता नहीं उन लोगों की कीर्तन में इतनी ऊंची भावना थी, 7-7, 8-8, 10-10 हजार आदमी बैठा होता था और उनमें 5-7 हजार आदमी आंसू बहते होते थे और बेशुद्ध सी बनी हुई होती थी और बस वो कीर्तन कर रहे होते थे, जैसे भगवान के साथ इन्हीं शब्दों के द्वारा मिलन हो रहा हो, संवाद हो रहा हो, बातें कर रहा हो। तो यहाँ त्रिपुटी जहाँ संवाद सा होता है, वार्तालाप भगवान के साथ में करनी होती है, हालांकि भले ये नीचे दर्जे की है उपासना भक्ति, पर ये कीर्तन के द्वारा भी वार्तालाप जैसी बात बन जाती है। तो यहाँ भेद ज्ञान होता है और उस अमृत में भेद ज्ञान नहीं होता, यहाँ भेद ज्ञान या त्रिपुटी बनी रहती है। तो यह अमृत की उपासना जो है तीन प्रकार की हो जाती है, सात्विक राजस और तामस भेद से। अर्थात उपसंहार हो जाएगा जल की उपासना का, पर मैं तो अमृत के तीन ही रूपों का वर्णन कर पाया हूँ, बाकी का कल करूंगा। क्योंकि ये हर एक जल जो है ये सात्विक राजस तामस भेद से है, तो कल प्रभा नाम के जल के तीन स्वरूपों का वर्णन करूंगा और उसके द्वारा उपासना कैसे होती है उसके विषय में करूंगा, और फिर रसना की बात आएगी। तो तीस प्रकार का ये यहाँ जल अकेला इसमें हो जाएगा, तो इसका भले प्रकार से नौ यहाँ होंगे और चार ये बारह यहाँ होंगे और नौ नीचे, ये तीस प्रकार की इसकी अवस्था बनेगी सात्विक राजस तामस भेद से।